ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है और श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक ये रासलीला का वर्णन आता है। 29, 30, 31, 32 और 33, ये पांच अध्यायों को रास पंचाध्यायी कहते हैं और ये श्रीमद् भागवत का हार्ट है, हृदय है। पूरा जो श्रीमद् भागवत में प्रेम का संदेश सुखदेव जी देना चाहते हैं उसका सार ये पांच अध्याय हैं। और श्रीमद् भागवत जो है वो स्वयं राधा रानी का जो भाव है कृष्ण के प्रति वो श्रीमद् भागवत है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु ये स्वयं राधा रानी है और श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है वो कृष्ण के प्रति राधा रानी का जो भाव है आराधना उसको प्रकट किया गया है। और उस आराधना में ये जो पांच अध्याय है वो सर्वोत्तम है। तो रासलीला ये विषय बहुत ही गहन और कठिन विषय है, इनको समझना इतना आसान काम नहीं है। तो रासलीला के विषय में चर्चा करने के बदले में रास से हम क्या क्या सीख सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि जब भगवान ने मुरली बजाई तो गोपियाँ क्या कहते हैं उसको, एन्जॉय करने के प्रति आसक्त होकर प्रवृत्त होकर भाग गई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान के प्रति आकर्षित होना साधारण बात है जीव के लिए। प्रभु जी थोड़ा सा उसको बढ़ाएंगे क्या, ऐसे बहुत गर्मी लग रही है मुझे, 24 थोड़ा सा उसको चेंज भी कर लीजिए साइज उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करो डायरेक्शन प्रभु जी, डायरेक्शन थोड़ा चेंज करो डायरेक्शन डायरेक्शन ठीक, ऊपर का भी नीचे करो, ऊपर ऊपर लूअर्स लूअर्स थोड़ा, हाँ बस 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 बस। हरे कृष्णा। तो मैं क्या कह रहा था बताइए। हाँ, तो भगवान से आकर्षित होना ये जीव के लिए स्वाभाविक गुण है और वो होना भी चाहिए। अगर वो भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता है तो फिर नेचुरली माया के प्रति होता है। दो ही चीज़ें हैं आकर्षित होने के लिए, या तो हम माया में हैं या तो भगवान के विषय में रममाण हैं। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन है इसमें कई प्रकार के मार्ग हैं जो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। एक मार्ग है भगवान को छोड़कर जीने का, जिसके लिए हम प्राथमिक रूप से यहाँ पर छोड़ कर आए हैं, वो है भोग। तो भगवान को छोड़कर देह धारण करके बाहरी वस्तु का भोग लेना चाहते हैं उसको भोगी कहते हैं, है ना। एंजॉइंग इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं मूल मूल भाव से भगवान को छोड़कर, ताकि भगवान को छोड़कर स्वतंत्र रूप में हम यहाँ पर एंजॉय कर सकें इन दुनिया के वस्तुओं को और विषयों को। तो जब भी भोग ले लेकर, कई प्रकार की विरक्ति होती है, जब बहुत ज़्यादा भोग लेते हैं ना तो विरक्ति आ जाती है। जैसे हमने समझो आज 50 जलेबी खा ली तो आप जलेबी से कुछ समय के लिए विरक्त हो जाएंगे, अभी जलेबी नहीं खाना है बहुत हो गया अभी, तो एक प्रकार का वैराग्य है ना वो। जब बहुत ज़्यादा भोग होता है तो कुछ समय के लिए हम भोग से विरक्त हो जाते हैं, लेकिन ये टेम्पररी है, कुछ दिन के बाद फिर जलेबी खाना शुरू करेंगे हम। और एक है स्मशान वैराग्य, जब किसी की डेथ देखते हैं, कोई दुर्घटना देखते हैं, कोई भयंकर दुखदारी घटना देखते हैं, तो भी हमको लगता है कि ये सब झूठ है, ये सब छोड़ना चाहिए। और एक होता है मर्कट वैराग्य, वो दिखने में बहुत वैरागी लगता है लेकिन उसका मन जो है वो हमेशा भोग के चिंतन में बसा रहता है, कपड़े भी नहीं पहनता है वो, एकदम विरक्त दिखाई पड़ता है लेकिन मन में हमेशा काम भावना जागरूक रहती है उसके। तो ये तीनों प्रकार के वैराग्य जो हैं वो टेम्पररी हैं और युद्धलेस हैं, लेकिन जो ज्ञान के आधारित वैराग्य आता है कि बुद्धि के स्तर पर समझ गए हैं कि इस जीवन में जब भी हम जी रहे हैं तो यहाँ के वस्तुओं को भोग करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो टेम्पररी है, आत्मा को वो समाधान नहीं देने वाला है। इस स्तर पर जब भी हमको समझ में आता है कि ये अच्छा नहीं है, वो जो वैराग्य है वो आगे जाकर भगवान से मिला देने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो ज्ञान पर आधारित है। और उसके बाद में जो अपने ही आत्मा में रमण करता है, यानी आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है उस स्वरूप में आनंद लेता है वो, कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ और मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो उसको योगी कहते हैं। योगी की व्याख्या क्या है? योगी को भगवान पर प्रेम नहीं होता है, योगी खुद पर प्रेम करता है, खुद पर ही वो लट्टू रहता है। फिर उसके आगे जाता है व्यक्ति, तो जब उसको आगे के आनंद की परिचय होता है तो वो भगवान में रस लेना आरंभ करता है, क्योंकि तो भगवान स्वयं रस विग्रह है। तो समझ में आता है उसको साधना करने के बाद कि भगवान जो है वो रस के सागर है, मैं तो अणुमात्र हूँ, मैं कितना भी अपने आप में रमण करूँगा तो अणुमात्र का ही रमण करूँगा मैं। तो जो परमात्मा के साथ रमण करता है उसको आदि योगी कहा गया है, ठीक है। लेकिन जो रास की संकल्पना है, जो रास लीला का कल्पना हम लोग यहाँ कर रहे हैं, उसमें जीव कभी भी रमण नहीं करता है। इंग्लिश में कहे तो द सोल नेवर ट्राइज टू एन्जॉय इन द एक्टिविटी ऑफ रासलीला। एक स्तर ऐसा आता है कि जीव अपने आनंद का प्रयास छोड़ देता है, अपना आनंद का देखता ही नहीं वो, क्योंकि भगवान की सेवा करने में, वैष्णवों की सेवा करने में अपने आप स्वतः ही न चाहते हुए न प्रयास करते हुए इतना आनंद प्राप्त होता है, तो वो आनंद के लिए इच्छा ही नहीं करता है, अपने आप आनंद प्राप्त होता है। जैसे कोटि कोटि कोट्याधीश व्यक्ति जो है, करोड़पति, उसका बालक कभी धन की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि इतना ऑलरेडी धन है तो और धन की इच्छा नहीं होती उसको, जब चाहे जो चाहे वो सब मिल सकता है, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो वो किसी और चीज़ में मन लगा देता है धन को छोड़कर। तो भगवान की भक्ति में इतना परम अनंत कोटि का आनंद है कि एक बार भगवान की सेवा में जो लगता है वो फिर आनंद के लिए अलग प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि रास की कल्पना कब शुरू होती है, रास ये क्या कल्पना है, रास ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जीव केवल भगवान की सेवा करता है। एक और प्रकार से समझेंगे हम कि रास लीला ये जीव का प्रयास है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, इट इज़ एन एफर्ट और प्रयास जस्ट टू प्लीज द लॉर्ड। अगर उसमें किसी प्रकार की अपने आनंद की अपेक्षा है तो उसको रास नहीं कह सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी कॉल्ड एज रास। तभी मैंने भोगी की व्याख्या की, योगी की व्याख्या की, आदि योगी की व्याख्या की। तो कहते हैं आगे भोगी और योगी जो है वो रासलीला के योग्य नहीं होते हैं, उनका कभी भी रास में प्रवेश नहीं हो सकता है। आदि योगी जो है, जो परमात्मा के साथ रमण करता है, यानी परमात्मा के साथ दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वो रासलीला के ऑडियंस के योग्य है, रासलीला देखने के योग्य है। लेकिन रास में प्रवेश करने के योग्य वही व्यक्ति है जो केवल सर्वतोपरि हर तरह से हर भावना से भगवान की इच्छा के लिए ही समर्पित है, इसलिए गोपियों को प्रवेश मिला। आगे भी बताते हैं कि रास जो भगवान को प्रयास प्रयत्न करते हैं जीव, भक्त लोग, भक्ति योगी जब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं भगवान, उनका प्रयास सफल कैसे हो सकता है? बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, वो कृष्ण की इच्छा से ही सफल हो सकता है। हमें भगवान की सेवा भी करनी है तो वो भी सफलता भगवान की इच्छा होगी तो प्राप्त होगी। दूसरा, बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा से हमें भगवान की संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो भी उनकी कृपा की आवश्यकता है। भगवान को संतुष्ट करना है तो भगवान की पुकार भी हमारे पास आनी चाहिए, बुलावा आना चाहिए। भगवान की इच्छा होगी तो ही हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और लास्ट में भगवान की परमिशन भी होनी चाहिए, उनका अनुकूल भाव होना चाहिए हमारे प्रति। तो ये सब करने के लिए हम साधना करते हैं ताकि भगवान का ध्यान हमारे ऊपर जाए, भगवान को हम अच्छे लगने लगे, भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न हो जाएं, इसलिए हम साधना करते हैं। साधना करने का एक ही प्रयास है, शुरुआत में साधना हम करते हैं दुखों से मुक्त होने के लिए। आर्त व्यक्ति होता है तो दुखी होकर भगवान के पास जाता है तो दुख निवारण की अपेक्षा से भगवान के पास पहुंचता है। भगवान स्वयं कहते हैं ना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये चार व्यक्ति भगवान के साथ पास जाते हैं। तो आर्त व्यक्ति जाता है दुखों का निवारण करने के लिए, अर्थार्थी यानी जो गरीब है वो कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाता है, जिज्ञासु जो है वो क्या है ये सब कुछ, ये कुतूहल से भगवान के पास जाता है। लेकिन तीनों व्यक्ति कुतूहल अगर संतुष्ट हो गया, अर्थ प्राप्ति हो गई, दुख कम हो गया तो भगवान को छोड़कर जा सकता है, भाई काम हो गया खत्म। लेकिन इसमें ज्ञानी जो व्यक्ति है वो केवल पता है उसको भगवान के विषय में, इसलिए भगवान के पास जाता है। वो हो सकता है ज्ञानी व्यक्ति भी आर्त और जिज्ञासु हो सकता है, लेकिन क्योंकि ज्ञान है इसलिए वो भगवान के पास टिक जाता है। केवल अर्थार्थी होगा तो धन प्राप्त होने पर निकल जाएगा, केवल जिज्ञासु होगा तो जिज्ञासा तृप्ति होने पर निकल जाएगा, केवल दुखी होगा तो दुख समाप्त होने पर निकल जाएगा। लेकिन आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी होने पर ज्ञान के साथ में होगा, ज्ञान का अर्जन करता होगा, साथ साथ में पढ़ता होगा, सुनता होगा, श्रवण करता होगा, तो वो टिकेगा। और एक दिन उसका अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु स्वरूप नष्ट हो जाएगा और केवल ज्ञान है इसलिए वो भगवान के पास रहेगा विथ फुल नॉलेज। इसलिए रास लीला में स्वयं के आनंद का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि रासलीला कोई लड़के लड़कियों का खेल नहीं है, कोई कामुक जवान युवा अवस्था में काम पीड़ित लोगों का ये खेल नहीं है। ये शुद्ध प्रेम जो निरपेक्ष निस्वार्थ है इसकी लीला है और ये श्री कृष्ण रचाते हैं, गोपियाँ नहीं रचाती हैं। श्री कृष्ण उनको बुलाते हैं तो गोपियाँ सुनती है, और गोपियाँ सुनती भी क्यों है उसका भी कारण है, क्योंकि गोपियाँ वो भक्त हैं भगवान की जो भगवान से मिलने के लिए बड़ी आतुर थी, भगवान से मिलने के लिए बड़ा लौल्य था उनके अंदर, लालायित थी भगवान के लिए। जब तक हम भगवान को प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं होते हैं तब तक भगवान को पुकारती भी नहीं है, उनको बुलाती भी नहीं है। तब तक हम अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, अष्टांग योग, ये योग, वो योग, साधना, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक स्टेज पर अब जब हम प्रामाणिक भक्तों के साथ में अपना सत्संग करते हैं, उनके साथ में अपनी साधना करते हैं, उनके निर्देश में रहते हैं और बाहर नहीं भटकते हैं, तो धीरे धीरे हमारी साधना का परिणाम भगवान को मिलने के लिए लालायित होने में हो जाता है। वी टर्न इन टू द ईगरनेस, वी गेट ईगरनेस टू मीट द लॉर्ड। सबको मुरली सुनाई नहीं पड़ी, सब गोपियों को जो भगवान को मिलने के लिए बहुत आतुर थी उनको ही मुरली सुनाई पड़ी। मैंने कल भी आज कहा था, पता नहीं कब कहा था, लेकिन भगवान की मुरली तो निरंतर बज रही है और निरंतर भगवान अपने मुरली के माध्यम से सभी लोगों को बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आ जाओ, लौट कर चले आ जाओ, यहाँ का मोह छोड़ो, इंद्रिय भोग की इच्छा को छोड़ो, स्वयं को तृप्त करने की इच्छा छोड़ो, ये सब कभी होने वाला नहीं है, आपकी तृप्ति केवल मुझमें है, अब आ जाओ। वो सबको एक तो निरपेक्ष भाव से सबको प्रेम से पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी पुकार सुनना ही किसको पड़ती है, जिनको अभी उनको मिलने की इच्छा जागृत हो गई है। इसलिए हमें वो जो है ना, श्रीमान रास रसारंभी बंसी वट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रेय सुना, ये अगर भगवान की मुरली की आवाज़ सुननी है, हमारी इच्छा है कि सुनाई पड़नी चाहिए, तो हमें अपनी सेवा में परिपूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। शुरुआत मदन मोहन जी से होती है, कि ये जो भोग है, पहला जो बताया मैंने, वो भोग को त्याग करके जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो वहाँ मदन मोहन जी की कृपा है। मदन मोहन जी की कृपा से हम दुनिया के भोग से विरक्त होकर या विमुक्त होकर या क्या विमुख होकर, अभी उनमें रुचि लग नहीं रही है, भगवान के पास में आते हैं और लग जाते हैं। गोविंद देव की कृपा से हमें भगवान की सेवा प्राप्त होती है। ये न कहने प्रकार हमारी इंद्रियों को लगाकर हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन हो सकता है परिपूर्ण नहीं होगी, हमारी इंद्रिया शुद्ध नहीं है, कोशिश हो रही है, लेकिन वो सेवा में जब भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से परिपूर्णता प्राप्त होती है, तब जाकर हमें भगवान की पुकार सुनाई पड़ती है। तब गोपीनाथ जी आ जाते हैं। गोपीनाथ जी का काम क्या है? वो मुरली बजाते हैं, बंसी वट के नीचे खड़े होकर मुरली बजा रहे हैं। और जब वो मुरली की तान से हम आकृष्ट हो जाते हैं, और ये अंडरस्टूड है कि जब मुरली की तान से आकृष्ट होते हैं तो भौतिक इच्छा समाप्त हो गई है, तभी वो तान सुनाई पड़ेगी। हाँ, जब ही हमारे आसपास बहुत शोर चल रहा है, और समझो अभी यहाँ से राधा वृंदावन बिहारी के मंदिर में कीर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत शोर है तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा वो। यहाँ पर जब परम शांति हो जाएगी तो वहाँ की आवाज़ दूर से आपके कान में पड़ेगी। आप कभी रात को ना वो माँ बन के तीसरे माले पर जाएंगे, दूसरे माले पर जाएंगे, तो आपको वहाँ के कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ती, क्योंकि अभी बीच में कुछ आवाज़ नहीं है और आपके पास भी नॉइज़ नहीं है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जब तक हमारे हृदय में काम वासनाओं का नॉइज़ है, शोर है, तब तक भगवान की पुकार हमको सुनाई नहीं पड़ती। जब हमारे हृदय के अंदर के शोर को हम शांत कर देते हैं, इच्छाओं के शोर को, और ये शोर इतना भयंकर होता है कि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। बाजू में कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई हमारी मदद चाहता है, वो भी हमको पता नहीं चलता है। इतना हमारे अंदर का शोर जो है वो पावरफुल होता है। तो जब ये शोर नष्ट होता है, तब एक तो लालायित भाव निर्माण होता है, लौल्य निर्माण होता है, और लौल्य के बाद में फिर भगवान की बंसी सुनाई पड़ती है, और फिर हम भगवान के पास जाते हैं निरपेक्ष भाव से उनको संतुष्ट करने के लिए, और तब जाकर रास ये संकल्पना प्रकट हो सकती है। नहीं तो रास तो ये कल्पना ही रह जाएगी, क्योंकि रास में स्वयं के आनंद का कोई लवलेश नहीं है। उसके बाद में एक गोपी की व्याख्या दी गई है कि गोपी कौन है, जो जिसका अस्तित्व केवल सेवा के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करना है और कोई इच्छा नहीं उनके अंदर। अभी मैंने बताया कि जो जब परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण ये निर्णय लेते हैं कि आप में उन्हें रमण करना है, अभी हम इतने योग्य हो गए, निरपेक्ष हो गए, निस्वार्थ हो गए, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, और जब आप हम भगवान की मुरली की तान सुनते हैं और भगवान बुलाते हैं, तब तो वो इच्छा करते हैं कि आप में रमण करें, आपके साथ रमण करें। तो भगवान जब निर्णय लेते हैं कि उनको जीव के साथ रमण करना है, रमण यानी आनंद लेना है, तो उसी को रासलीला कहते हैं। जीव की इच्छा से रासलीला नहीं होती है कि भगवान ने, गोपी ने कहा, गोपी मुझे, गोपी ने कहा भगवान हमको आपसे रासलीला करनी है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन रास आरंभ हुआ है, सबसे पहले भगवान ने मुरली बजाकर गोपियों को बीच रात में बुलाया है। उसके बाद में हर दिन भगवान ने रासलीला की है। वृंदावन धाम का ऐसा कोई भूमिका कर्ण नहीं है जिस पर भगवान ने रासलीला नहीं की है, अलग अलग स्थानों पर की है, लेकिन हर कर्ण पर भगवान, वृंदावन के हर कर्ण पर ये रासलीला संपन्न हुई है। इसलिए पूरी ही वृंदावन धाम ये भगवान की रास स्थली है, और कुछ में कुछ विशिष्ट स्थलियाँ हैं, जैसे बंसीवट का जमुना किनारा है, जैसे चंद्र सरोवर है, जैसे और संकेत वन में है, जैसे बरसाना में है, नंदगांव में है, ऐसे बहुत सारे विशिष्ट रास मंडल जरूर है, लेकिन वैसे स्थूल कल्पना से पूरा ब्रजमंडल रास मंडल है, और जहाँ जहाँ भगवान ने पुनः 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 रास किया है वो फिर रास मंडल के रूप में फेमस हो गया है। ये संकेत में रास मंडल है, उधर चंद्र सरोवर के पास रास मंडल है, बंसीवट के पास रास मंडल है, वृंदावन में रास मंडल है। और एक इसमें बहुत सुंदर शिक्षा है, वो शिक्षा ये है कि भगवान जब तक हमें नहीं बुलाते हैं तब तक उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनकी सेवा करते रहने चाहिए। जैसे एग्जांपल है, हमारे गुरुजी के बहुत सारे सेवक होते हैं ना, पर्सनल सर्वेंट, वो बार बार आकर पूछते नहीं है, महाराज कुछ सेवाएं, महाराज कुछ सेवाएं, कुछ चाहिए महाराज, क्या चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट लेके आऊँ, पानी लेके आऊँ, दूध लेके आऊँ? नो, इट इज़ नॉट एडवाइज लाइक दैट. वो व्यक्ति जो बार बार आकर 50 बार पूछता है, वो योग्य सेवक नहीं है. योग्य सेवक वही है जो अवेलेबल रहता है जब ज़रूरत होती है. एक सुंदर वाक्य हमारे यहाँ पर ही हमको बताया गया, अ बेस्ट सर्वेंट इज इनविजिबल बट अवेलेबल. वो यही कही है, अभी आपको सामने सामने दिखाई नहीं पड़ेगा, वो आगे आगे नहीं करेगा, लेकिन जब चाहे तब अवेलेबल है वो. ऐसा कहाँ गया पता नहीं, 12 दिन 4 घंटा बुलाया नहीं तो फिर भी वो चला गया वृंदावन बिहारी मंदिर में, वहाँ पर कीर्तन में बैठा हुआ है. नहीं, वही रहेगा, सामने नहीं रहेगा, लेकिन वो अवेलेबल रहेगा. ऐसे ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर सकते हैं जो सदैव अवेलेबल रहते हैं सेवा के लिए और सेवा करते भी रहते हैं, लेकिन आगे आगे आकर अपनी सेवा का बखान नहीं करते और प्रकट भी नहीं करते रहते. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या दिखाई पड़ता है कि सेवा का गर्व नहीं है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति में नम्रता है. वो सेवक के रूप में अपने सेवक के रूप में गर्व को महसूस नहीं करता है, और ये गर्व जो है वो रासलीला में भी उसका कोई स्थान नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. जो व्यक्ति हम लोग सब लोग दुनिया में रहते हैं तो सब लोग हम लोग गर्व का अनुभव तो करते हैं, है ना. मैं सुंदर हूँ, मैं युवा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हूँ, मैं बड़ा अधिकारी पुरुष हूँ, कितने सारे चीज़ों का गर्व होता है. लेकिन हमारे भक्ति मार्ग में एक ही भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें हमको सिखाया जाता है कि ये सारे गर्वों को छोड़ देना चाहिए. एक श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टक में, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि. स्वीकार क्या लिखा है कि भगवान मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री का आनंद नहीं चाहिए, मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मुझे स्तुति नहीं चाहिए, मुझे गौरव नहीं मेरा होना चाहिए, मेरे कोई अनुयायी नहीं होने चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति की आवश्यकता है. ये भावना कैसे आ सकती है? अपने आप नहीं आ सकती है. जिसके पास कुछ धन है उसको धन का मजा उसने चखा हुआ है, वो धन के ऊपर गर्व करेगा ही करेगा. जिसके पास सौंदर्य है, अट्रैक्शन है अपने शरीर का, और उसका लाभ लिया है उसने, कभी लोगों ने फराना की है कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, तो उसका गर्व होगा ही होगा. तो ये फिर ऐसे आकर्षण कब छूटेगा और कैसे छूटेगा? जब हम भगवान का धन ऐश्वर्य देखेंगे, भगवान का शरीर का वपू का ऐश्वर्य देखेंगे, भगवान का अधिकार देखेंगे, भगवान की शक्ति देखेंगे, भगवान के अनुयायी देखेंगे, भगवान का प्रभाव देखेंगे, भगवान का सब कुछ देखेंगे, तो हमको लगेगा हमारे पास शायद कुछ भी नहीं है. तो ही हम कह सकते हैं न धनम न जनम सुंदरम, कि ऐसा तुच्छ संग्रह करके क्या लाभ है. हम कितना भी अगर अपने बेस्ट और बेस्ट पे धन संचय करने का प्रयास करेंगे तो भगवान के धन के सामने हम लोग एक बिंदु ही इकट्ठा कर सकते हैं. ये जब अनुभूति होती है तब वो न धनम कह सकता है. इसलिए बार बार भगवान के क्या कहते हैं उसको गुणगान करना चाहिए, भगवान के यश गान करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि भगवान के यश के सामने हमारा यश कुछ भी नहीं है. देन ओनली वी कैन से न धनम न जनम. भगवान के अनुयायियों को देखेंगे, हमारे पास कितने काउंसिली जहरे 50 काउंसिली होंगे, क्या इतना गर्व करना है उसके लिए. या गुरु बनेंगे तो हम कहेंगे 10,000 शिष्य हैं, लेकिन पूरा विश्व भगवान के फॉलोअर हैं. तो इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होने पर ये नो 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 कैसे कह सकते हैं? जब भगवान को हम देखते रहते तो हमको पता चलता है कि ये सब कुछ भगवान के सामने कुछ भी नहीं है. तो ये भाव निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, और इस भाव से जब हम सेवक बन जाते हैं तो अपने आप फिर गर्व नष्ट होता है. जैसे हम गुरुजी की सेवा में लगे हुए हैं तो हमको पता होना चाहिए गुरुजी का सेवा भाव, गुरुजी का प्रेम, गुरुजी की करुणा, गुरुजी की नम्रता, गुरुजी की सहनशीलता, गुरुजी का हर गुण जो है वो इतना पराकोटि का है कि हमारा इसके बारे में तुलना करेंगे तो कुछ भी नहीं है. इसलिए मुझे इनकी सेवा करते रहनी चाहिए क्योंकि ये सेवा के योग्य हैं. तो ऐसे सोचेंगे तो अपने आप नम्रता उत्पन्न होती है, अपने आप गर्व नष्ट होने लगता है. अपने पास जो कुछ है उसका गर्व तब नष्ट होता है जब हम उससे ज़्यादा किसी के और पास देखते हैं, तो फिर गर्व अपने आप नष्ट हो जाता है. अगर मैं बहुत धनी हूँ लेकिन मैं अंबानी के घर पे गया तो मैं लगेगा मैं तो चूहा भी नहीं हूँ इनके धन के सामने. तो इसलिए हमसे ज़्यादा संपन्न व्यक्ति के साथ हमेशा रहना चाहिए, ताकि हमारा गर्व हमेशा शून्य होता रहे। कोई गर्व की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं ये बात सब क्यों बताई, इनविजिबल बट अवेलेबल। तो इसलिए भगवान के पास तब जाना चाहिए, अब भगवान की सेवा करते रहनी चाहिए, लेकिन सामने भगवान के तब जाना चाहिए, भगवान बुलाते हैं। तो गोपियों को भगवान ने मुरली बजाकर बुलाया, है ना। तो सब लोग गोपियां भागी भगवान की पुकार को रिस्पांस देने के लिए। लोग समझते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भागी, लेकिन वो भगवान को केवल संतुष्टि देने के लिए भागी। ये सब समझना ज़रूरी है, तब तक हमको वो पंचाध्यायी का अर्थ समझ में नहीं आएगा। जब तक हम सोचते रहेंगे गोपियां बहुत कामुक थी, गोपियां को भगवान के प्रति बड़ा आकर्षण था, इसलिए मुरली बजाती भाग गई वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, सब गलत बात है। और फिर भगवान ने क्या किया, गोपियां भाग कर आई, वो भी कहाँ पर, उनका घर था और कहाँ वृंदावन है। आज के तारीख में वृंदावन टोटल डिफरेंट है, वो बंसीवट का एरिया है ना, उसमें इतने आश्रम है कि उधर एक गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकते आपको, या तो रिक्शा या तो ऐसे जाना पड़ेगा टू व्हीलर से। लेकिन आप वर्णन पढ़ेंगे ना अच्छी तरह से दशम स्कंद का, तो वो पूरे बीच जंगल में था, जिसमें बहुत हिंस पशु भी थे, ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि कृष्ण उनको पूछते हैं, आपको डर नहीं लगा, आप बीच रात में ऐसे भाग के आई, इसमें शेर है, सिंह है, बाघ है, सब कुछ है इधर, आपको पता नहीं चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंसीवट का स्थान जमुना किनारे जहाँ भगवान बैठकर मुरली बजा रहे थे, वो उनके घर से बहुत बहुत दूर था, और वहां तक पहुंचने के लिए उनको बहुत कुछ त्याग करना पड़ा। क्या क्या त्याग किया उन्होंने, अपने पति का संबंध, अपने पुत्रों का संबंध, अपने रिश्तेदारी का संबंध, अपने कर्तव्यों का संबंध। कितने कर्तव्य थे उनके घर पे चल रहे थे, बहुत सारी सेवाएं थी, बहुत सारे ड्यूटीज थे उनके, बहुत सारे धर्म थे उनके जो किसी व्यक्ति को पालन करना चाहिए, वो सब कुछ छोड़कर आ गई। वो हमें कर्तव्य करना चाहिए। भगवान ने वो आने के बाद में क्या किया, तुमको क्यों नहीं आना चाहिए था, इसका बखान सुनाया। देखो एक 10 श्लोक है 29वें अध्याय में, वो उसमें भगवान उनको बता रहे आपको क्यों नहीं आना चाहिए था। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। वो 10 श्लोक के बाद में गोपियों ने उनको बताया कि उनको क्यों आना चाहिए और वो क्यों आ रही है और क्यों उनका आना सही है। जैसे भगवान बता रहे हैं कि आ रही, भगवान ने ना पति धर्म के विषय में बहुत लंबी व्याख्या की है इस अध्याय में, कि कैसे पति अगर लूला लंगड़ा भी हो, मूर्ख भी हो, और धनहीन हो, मतलब गरीब हो, बहुत रोगी हो, ये 4 प्रमुख कारण बताए भगवान ने, फिर भी अगर वो भगवान की सेवा में है, भगवान के साधना में है, संतों के संग में है, तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और कैसे किसी भी नारी को, अपने कैसे भी पति को, यानी ये तो रोगी हो या निर्धन हो या कुरूप हो या शरीर से व्यंग्रस्त हो, फिर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए और उसकी सेवा में लगना चाहिए, उसी में भगवत यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान स्वयं बता रहे हैं, यानी उसको क्या बता रहे हैं, अभी आप जाओ, आपने अच्छा नहीं किया, सबको छोड़ के आप आगे, आपको जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा उनको कि देखो, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे गोपियों ने कहा है लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो कोई पत्नी है और उसका पति जो है वो परदेश में काम कर रहे हैं, है ना। मैं भी परदेश में था अकेला, मेरी पत्नी मुंबई थी कुछ साल के लिए, और पत्नी हमेशा पति को खत लिखती है, या तो मेल लिखती है, अभी तो मेल लिखती है, उस समय मेल नहीं था, खत लिखती। और समझो पत्नी खत लिख रही है और पति दरवाजे पर बेल बजा रहे हैं, तो पत्नी को क्या करना चाहिए, नहीं मैं खत लिख रही हूँ, इम्पोर्टेंट भाव व्यक्त कर रही हूँ, खत लिखते रहना चाहिए, नहीं, उसको खत लिखना बंद करके दरवाज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि दरवाजे पर पति खड़े हैं। तो खत लिखना कब तक लॉजिकल है, जब तक पति वहाँ पर नहीं है, और जब पति आ जाते हैं तो खत लिखने को कोई वैल्यू नहीं है, खत लिखने की जरूरत क्या है, सामने बात करो उनसे आप। तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने पति है, आप जब मालिक की बात कर रहे हैं, स्वामी की बात कर रहे हैं, पति की बात कर रहे हैं, वो सभी जो है वो टेम्पररी है, और आप हमारे परम पति हैं, जीव के रूप में आप हमारे परम पति हैं। जब आपने बुलाया हमें, तो हमें सब पतियों को छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि ये सारे पति नश्वर हैं और हमारे मूल पति आप हैं। तो इस तरह से कई कारण देकर भगवान ने जो लॉजिक उनको बताया, उन लॉजिक को उन्होंने डिफीट कर दिया, और वो सब भगवान ने बातें क्यों बताई, ताकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे कितने समर्पित है मुझसे, और अगर कन्विंस हो गए भगवान की प्रीचिंग से तो वो जा सकते हैं। तो भगवान उनको छाटना चाहते थे, इसमें से कौन रहने वाले और कौन जाने वाले योग्य हैं, लेकिन कोई भी नहीं गया। तो इसे बहुत सुंदर बात बताई गई है कि एक बार भगवान बुलाते हैं तो वो जरूर जाना चाहिए, और भगवान ने बुलाने के बाद वो जाने को कहते तो जाना नहीं चाहिए। ये शुड स्टे, गोपियों ने इसका प्रमाण दिया है। भगवान ने बहुत उनको उकसाया कि जाओ जाओ आप जाओ, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट सेफ ऑल्सो, गो बैक, लेकिन गोपियाँ नहीं गई। यद गतवान निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, एक बार भगवान के धाम में गए हम, भगवान के पास गए तो भगवान ठुकराने पर भी हमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, बोलते क्या है, पास बुलाओ दूर भगाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी राधे, आ जाओ गिरिधारी। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा। एक स्थिति ऐसी है, यही स्थिति है गोपियों की, जब भगवान उनको बुला रहे हैं मुरली बजाकर, तो गोपियाँ यही एक्चुअली एक भाव से व्यक्त कर रही हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, आपने बुलाया है अभी आप उनको कुचल दो, ठुकरा दो, अपना बना लो, दूर भगा लो, जो करना है करो, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा, आप हमारे प्राणनाथ सदैव बने रहेंगे, चाहे कैसा भी व्यवहार आप हमारे साथ करो, जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हमारे साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आपकी इच्छा है, लेकिन हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति को भगवान भी त्याग नहीं सकते, और भगवान को उनका ही बनना पड़ता है। तो गोपियाँ हमारे लिए वंदनीय क्यों हैं, अनुकरणीय, यानी उनके उनके फॉलोएबल क्यों है, उनका उनको अनुकरण क्यों, अनुगमन क्यों करना चाहिए, उनको फॉलो क्यों करना चाहिए, क्योंकि गोपियों की भगवान पर अनन्य भक्ति थी, निरपेक्ष निस्वार्थ भक्ति थी। इसलिए ये सब परीक्षा लेने के बाद में भगवान प्रवृत्त हुए उनमें रमण करने के लिए, और तब जाकर रास प्रकट हुआ। रास तब तक प्रकट नहीं हुआ जब तक गोपियों ने अपना ये परमोच्च भाव प्रकट नहीं किया, और भगवान भी चाहते थे ये परीक्षा के माध्यम से कि गोपियों के अंदर का परमोच्च भाव विश्व के सामने प्रकट हो, इसलिए भगवान ने इसको प्रकट किया, गोपियों ने इस भाव को प्रकट किया और भगवान ने इसको स्वीकार किया। और एक यहाँ पर शिक्षा हमारे लिए है कि गोपियों ने प्रेम नहीं किया, तो आपको लगे शौक लगेगा, अरे आप क्या कह रहे हैं, प्रेम की बातें हो रही है गोपियों की, गोपियों ने प्रेम नहीं किया, गोपियाँ स्वयं प्रेम स्वरूपा थी। जब हम साधना करते ना तो हम भक्तिपूर्ण सेवा करने का प्रयास करते हैं, डिवोशनल सर्विस करने का प्रयास करते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं, मैं और भगवान। एक समय ऐसे आता है हम स्वयं भक्ति स्वरूप बन जाते हैं, पहले हम प्रेम करते हैं बाद में हम प्रेम स्वरूप बन जाते हैं, भगवान के लिए प्रेम करने योग्य हो जाते हैं। आपको समझ आ रही बात, एक हम कोशिश कर रहे हैं प्रेम करने की, और एक हम प्रेम करने के योग्य अपने आप बन रहे हैं। जब प्रेम करने के योग्य बन जाते हैं तो भगवान हमें तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी दो व्यक्ति होते हैं, एक प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना जिसके लिए की जाती है वो, लेकिन प्रार्थना करते करते प्रार्थी को स्वयं प्रार्थना बनते बन जाना चाहिए। यू हैव टू बिकम अ प्रेयर इटसेल्फ फाइनली। ऐसे व्यक्ति को भगवान को भी छोड़ते नहीं, जिसका जीवन ही एक प्रार्थना बन जाता है, उसकी हर गतिविधि एक प्रार्थना है, उसका हर वाक्य, हर सेवा, हर कार्य, हर चिंतन, हर विचार एक प्रार्थना है, वो स्वयं प्रार्थना स्वरूप बन जाता है, तो भगवान को अति प्रिय हो जाते हैं। जैसे हम भगवान को याद करते हैं भगवान का नाम लेकर, है ना, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि भगवान हमें याद करते हैं, जैसे हनुमान जी, भगवान के पास राम के पास दो किताबें थी, जो लोग उनको याद करते हैं उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था, तो सब मेरे कहा सुग्रीव उनको पूछने गए थे, मेरे कहा इसमें हनुमान जी का नाम नहीं है, भगवान ने छोटी किताब निकाली दूसरी, उसके अंदर कुछ गिने चुने भक्तों का नाम था, उसमें एक हनुमान जी का नाम था। तो जब हम ऐसे हो जाते हैं कि भगवान के लिए स्मरणीय हो जाते हैं, अभी भगवान हमारे लिए स्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय, और एक स्थिति ऐसी होती है भक्ति की, सेवा की, निरपेक्षता की, कि भगवान हमें याद करते हैं, तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक और भावना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और लेकिन इस बात का भी गर्व नहीं होना चाहिए, ऐसे आचार्य बताते हैं। शुरुआत में ये सब कुछ ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हम पूरी तरह से माया के हैं, तो उस स्थिति में भगवान को अपना समझना अच्छा है, माया से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बार माया से निकल गए तो हमको लगता है कि अरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये इस प्रकार का गर्व भी भगवान को पसंद नहीं है। या तो मैं माया से बाहर निकल चुका हूँ, माया को त्याग कर चुका हूँ, ये भी धारणा गलत है। क्यों क्यों धारणा गलत है ये? क्योंकि माया मायापति के कृपा से ही छूट सकती है। जब तक मायापति श्री कृष्ण माया दक्षिण प्रकृति सुरते चराचरम, तो चराचर को कंट्रोल करने वाले मायापति है, माया के अध्यक्ष हैं, जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तो कोई व्यक्ति माया को त्याग नहीं कर सकता। माया को देवी येषि गुणमयी मम माया दुरात्या माँ मे वही प्रदंते माया मेताम तरंती थे। अपने बल पर कभी भी जीव माया को त्याग नहीं कर सकता। मायापति को शरण जाने के बाद मायापति अगर तय करते हैं इसको निकालो, तो ही वो माया के बाहर निकल सकता है। इसलिए कभी भी अगर हमको लगता है कि हाँ अभी इतना आकर्षण नहीं रहा पहले जैसा, इसे किसी चीज़ के बारे में अगर लगता है आपको, तो बिल्कुल उस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है बाय चांस, तो वो मायापति श्री कृष्ण की कृपा से ही होता है और हुआ है। तो प्रामाणिक भक्त को सदैव इस बात की याद रहती है कि मेरा जो कुछ लगता है अचीवमेंट है वो मेरा नहीं है, वो श्री कृष्ण की कृपा है। कभी भी वो अपने आप को साधना के बल पर प्राप्त किया हुआ नहीं समझता है। साधना तो कर्तव्य के रूप में करते रहता है, लेकिन साधना का फल हमें भगवान दे रहे हैं, इस भावना से वो अवगत रहता है हमेशा। ही नेवर फील्स आई एम द डूअर, आई एम द अचीवर। उसको पता है कि अगर मैं साधना कर भी रहा हूँ तो वो साधना करने की शक्ति भी उन्हीं की तरफ से आ रही है। कभी कभी सुबह जल्दी हम उठते हैं, 2-3 बजे रोज उठते हैं जब करते हैं, तो उनको कुछ समय बाद गर्व होने लगता है, देखो आप लोग 6 बजे उठते हो, मैं 3 बजे से जगता हूँ, जब आप उठते हो मेरी सोने वाला पूरी हो जाती है। यही गर्भ जीव है, वो भी आपको भगवान से अलग करता है। कैसे? देखो अभी गोपियाँ सब भगवान की परीक्षा में पास हो गई, भगवान ने तय भी किया अब मैं इनमें रमण करूँगा, रास रचाऊँगा। फिर भगवान ने क्या किया कि गोपियों को ऐसा मैं आनंद दूंगा, ऐसा इनमें रमण करूँगा, एक एक रूप बनाऊँगा उनके लिए, एक एक के साथ रहूँगा, एक एक रूप के साथ। ऐसा रममाण किया उनको, तो उनको लगा कि अरे कृष्ण तो एक ही हैं, वो मेरे साथ हैं और किसी के साथ नहीं है। तो उनका थोड़ा सा गर्व हुआ उनको कि सबको छोड़कर मेरे साथ में आ गए, तुरंत भगवान अंतर्धान हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी भगवान को हम त्याग, मतलब क्या कहते हैं उसको, लूज कर सकते हैं, खो सकते हैं उनको। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान हमको छोड़ देते हैं, हम भगवान को छोड़ते हैं गर्व के माध्यम से। इसलिए अहम जो है ना, वो जब तक है, लवलेश मात्र भी है, तब तक भगवान बड़े दूर हैं हमारे से। और बड़ा बड़ा कठिन बात है ये, केवल संतों की कृपा से अहम का नाश हो सकता है। अपने बलबूते पर, अपनी साधना के ऊपर कभी भी अहम का नाश नहीं हो सकता है। जब संत कृपा करते हैं तो ये सब कुछ, तो फिर भगवान उनके संत के माध्यम से हमें काम से मुक्त करते हैं, क्रोध से मुक्त करते हैं, लोभ से मुक्त करते हैं, अहम से मुक्त करते हैं, मद से मुक्त करते हैं, मत्सर से मुक्त करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ कोई खेल नहीं है, कोई भी अपने बलबूते पर साधना करके इसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान ने उनको भी त्याग दिया और उनको ये अनुभूति दिलाई कि मेरे पास आने पर भी आप मुझे खो सकते हो अगर आपने अहंकार को अपना लिया तो। तो जब खो गए, मतलब खो दिया भगवान को, और भगवान ने फिर उनको एक बार दर्शन दिया, तब तक वो रो रो कर अपने अहम से मुक्त हो चुकी थी। और वास्तविक रासलीला जो है उसके बाद में आरंभ हुई है। उसके पहले क्या हुआ है, भगवान देखिए भागवत में आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि 29वें अध्याय में 30वें अध्याय में क्या हो रहा है। भगवान ने अभी उनकी परीक्षा लेकर वो पास हो गए, और नित्य करने के पहले ही भगवान एक एक गोपी के साथ एक एक रूप में उपस्थित हैं। क्या कर रहे हैं, उनका पैर दबा रहे हैं, इसके बालों का श्रृंगार कर रहे हैं, किसी को फूल बिन के दे रहे हैं, किसी को जमुना जी का जल देकर पिला रहे हैं, किसी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अभी तक नित्य शुरू नहीं हुआ है, वैयक्तिक संगी है और भगवान सेवा कर रहे हैं उनकी, और उसी से उनको गर्व हो गया है कि देखो सबको छोड़ के मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मतलब भगवान अंतर्धान हो गए हैं। एक बार अंतर्धान हो गए राधा रानी को लेकर और एक बार राधा रानी को छोड़कर भी अंतर्धान हो गए हैं, क्योंकि भगवान ने केवल एक बार रास नहीं किया ना, भगवान ने अनंत बार रास किया है, अलग अलग बार अलग अलग लीलाएं भगवान ने की है। लेकिन सबका सार एक ही है कि जब तक हम पूर्णतः अहंकार रहित और माया रहित नहीं हो जाते हैं तब तक रास का आरंभ नहीं हो सकता है। इसलिए रास बहुत विशिष्ट है, इसलिए रास काम वासना का स्वरूप है, काम वासना का प्रकटीकरण है, गोपियों का काम वासना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने रास किया, ये सब सोचना बहुत महत पाप है। और दुनिया के लोग ये महत पाप हमेशा करते रहते हैं और इसलिए उनको प्रवृत्त करने के लिए इनके सामने ये चर्चा कभी करना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी माया में लिप्त है वो, अपना अपना काम माया में भोग लेने में लिप्त है। आप बेकार में उनके सामने रासलीला का विषय कभी निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे निकालते ही उनके अंदर का जो द्वेष है, मत्सर है, वो प्रकट हो जाता है और भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करना आरंभ कर देते हैं और पतनशील हो जाते हैं वो। तो ऐसा ये रासलीला का महात्म्य है और इसमें पांच प्रकार के गीत हैं। अभी वो बहुत लंबा विषय है लेकिन आपको केवल मैं उसको टच कराता हूँ। जब ये भागवत में एक श्लोक है दशम स्कंद में, बरहा पीड़म नटवर बपू, मुझे पूरा याद नहीं है वो, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों कैसे मोर पंख पहनकर मुरली बजाते हुए, पीताम्बर पहने हुए कैसे गौचारण कर रहे हैं और उनके घुंघराले बाल, उनके कपोल, उनकी मुरली की तान, उनकी चाल, ये सबका सुंदर वर्णन किया है। इस श्लोक पर कहते हैं गोपियों को भगवान से प्रेम हुआ, निर्मिति। हाँ, तो आचार्यगण जो है वो उस प्रेम को दूध की उपमा देते हैं, दूध की उपमा। हाँ, आप कुछ समय के लिए सोच लीजिए कि ये प्रेम निर्माण जो हुआ वो दूध है, यानी गाय मिली, उसका दोहन किया तो दूध प्राप्त हुआ। उसके आगे वेणुगुत आता है, यानी भगवान ने मुरली बजाई तो क्या हुआ, जैसे हम प्राप्त किए हुए दूध को पात्र में डालकर अग्नि पर रखते हैं गर्म करने के लिए, तो वो कार्य आरंभ हुआ, यानी वो भी वो दूध जो है वो प्रेम जो है उसको उबालना, यानी क्या कहते हैं उसको कंडेंस करना, उबाल कर उसको क्या कहते हैं गाढ़ा करना का प्रक्रिया शुरू हो गया है। फिर उसके बाद प्रणय गीत आता है, वो भी कुछ लोगों का संग्रह है। प्रणय गीत से वो दूध उबलना शुरू हो गया, वेणु गीत से अग्नि पर रखा गया, अभी चालू नहीं हुआ है, प्रणय गीत से उबलना शुरू हुआ। गोपी गीत यानी तव कथामृतम तप्त जीवनम, जब वो गोपियाँ भगवान को ढूंढे ढूंढे गा रही है, जयति ते दिखम जन्म नाम रजा शयत इंद्रिया शश्व दत्त रही, इस समय पर उनका प्रेम जो है वो सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें अहंकार नष्ट हो गया। इस समय भगवान के साथ में नहीं है, प्राप्त हुए थे अभी साथ में नहीं है, तब उनको पूरा पता चला कि सब अहम की वजह से है, तो अहंकार त्याग जब पूरा हुआ उनका तब कहते हैं उनका प्रेम सिद्ध हुआ। और मतलब अभी दूध उबल के रेडी है तो हम लोग उसी पात्र से पीते हैं क्या, कभी क्या करते हैं उसको, हम एक ठंडे पात्र में लेते हैं या तो एक ऐसे चीनी माथी के कप में लेते हैं जो बाहर से गर्म नहीं होता है, उसको हैंडल होता है, जिसको हम पी सकते हैं, बड़े फूक फूक के धीरे धीरे पियेंगे लेकिन उससे पी सकते हैं, लेकिन जिसमें उबाला हुआ है उसको भी मुँह लगा सकते हैं क्या, तो दूध जितना भी सुंदर होगा, अच्छा सिद्ध हो गया उबाल के बहुत बढ़िया हो गया वो, लेकिन उसका आस्वादन हम नहीं कर सकते, हमारे होंठ जल जाएंगे। तो उसके आगे आता है युगल गीत, गोपी गीत के बाद में आता है युगल गीत, और युगल गीत में वो पीने वाले पात्र में डालने का काम हुआ है, यानी ग्रहण करने के लिए उसको प्राप्त हुआ है, योग्य रीति से ग्रहण करने जैसा हो गया वो। और आगे आता है भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत क्या है कि राधा रानी के चरणों में एक भ्रमर जो है वो गुंजारव कर रहा है और राधा रानी उससे कृष्ण समझकर बात कर रही है, कभी ताने भी दे रही है, कभी क्रोध भी कर रही है, कभी कुछ बुरा भला भी कह रही है, कभी प्रेम से बातें करके भी रो रही है उनके साथ बात करते करते, तो वो पूरा जो संवाद है कृष्ण को समझकर भ्रमर समझकर किया हुआ जो संवाद है उसको भ्रमर गीत कहा गया है। वो लीला भ्रमर घाट पर हुई थी, जब वृंदावन में आप जाएंगे श्रृंगार भट्ट के आगे जाएंगे तो वहाँ भ्रमर घाट है, वहाँ पर ऐसा सुंदर चित्रपट है, वो उधर गंभीरा नाम का जगह है श्रीवत्स गोस्वामी का, उसके अंदर वो एक मंदिर है, उसके अंदर एक चित्रपट है जहाँ पर राधा रानी सिंहासन बैठी है, उसके चरणों में वो भ्रमर जो है वो घूम रहा है और राधा रानी से संवाद कर रही है। तो वो जो भ्रमर गीत है वो कहते हैं कि वो प्रेम का आस्वादन है, अभी पात्र में डालकर उसका आस्वादन किया जा रहा है। यानी गोपियाँ भ्रमर गीत के स्तर पर, जो 33वें अध्याय में आता है, भ्रमर गीत के स्तर पर गोपियाँ पूर्णतः प्रेम में सिद्ध हो गई, वो प्रेम का आस्वादन किया उन्होंने। फिर भी भगवान उनको आस्वादन करा रहे हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, गोपियाँ कुछ इच्छा नहीं कर रही है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। भगवान उनको ये जो प्रक्रिया है ना, प्रेम निर्माण होना, पात्र में रखना, उबालना, उबाल कर अलग पात्र में डालना, पीने योग्य बनाना, फिर आस्वादन करना, ये सारी क्रिया भगवान उनसे करा रहे हैं। जैसे बालक आपका है, वो खुद कोई चीज़ खाने को योग्य नहीं होता है, आप उसको या तो स्तनपान कराते हो, या तो बोतल बांध कराते हो, तो चम्मच वाटी बांध कराते हो, या तो हाथ में खाना बनाकर खिलाते हो, उसको कुछ पता नहीं है, वो केवल रोना जानता है ना। तो रास भी इसी प्रकार का भाव है, गोपियाँ कुछ नहीं कर चाहती है ना, जहाँ करती है ना चाहती है, भगवान उनको देना चाहते हैं। और यही जीवन की परिपूर्णता है, जब भगवान को हमें देने की इच्छा होती है तो हमारे जीवन की परिपूर्णता होती है। सोचा आपको थोड़ा सा ये रास का कुछ टीचिंग्स बताऊं। और आज का दिन जो है वो लक्ष्मी देवी के जन्मदिन भी है आज का। टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी का जन्म कहाँ पर हुआ? समुद्र मंथन में हुआ। समुद्र मंथन से 14 रत्न निर्माण हुए, ऐरावत, हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हुई। वो सब आते ही भगवान ने उनको सबको देवी देव और राक्षसों को बांट दिया। जैसे उच्चैश्रवा घोड़ा बलि महाराज को दिया, ऐरावत इंद्र को दे दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया उसको। और उसके अंदर लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी आते ही सभी देवी देवताओं ने उनसे विवाह करना चाहा, लेकिन लक्ष्मी देवी माला लेकर सीधे अजित कृष्ण के पास गई और उनको माला पहना दिया। सब देखते रह गए, इच्छा करते हुए सीधे गई और अजित कृष्ण जो मंथन के ऊपर बैठे हुए थे, मंदार पर्वत के ऊपर, नीचे कूर्म भगवान थे उसको स्थिर करने के लिए, ऊपर अजित भगवान बैठे हुए थे, उनको जाकर माला पहना दिया। तो वो लक्ष्मी जी का आज जन्मदिन है। तो आज के रात्रि का एक और नाम है कोजागिरी पूर्णिमा। महाराष्ट्र लोगों को पता है, महाराष्ट्र में काल निर्णय कैलेंडर में लिखा है कोजागिरी पूर्णिमा। हम लोग उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, रास पूर्णिमा कहते हैं। तो कोजागिरी पूर्णिमा का अर्थ क्या है? को जागृति, यानी कौन जाग रहा है, को जागृति, क्वासी यानी कहाँ हो, किम पश्यसी क्या देख रहे हो, को जागृति कौन जाग रहा है। तो लक्ष्मी देवी अपने वाहन पर बैठकर अवकाश में इस रात को पूरी रात भर वो घूमती रहती है, देखने के लिए कौन जाग रहा है, और जागकर भगवान के नाम के सेवा में या भगवान नाम सेवा कीर्तन सेवा में मग्न है, उस पर वो परम कृपा करती है और वो कभी भी धन के अभाव में रहता नहीं है। और लक्ष्मी देवी का धन कौन सा है? केवल वित्त है क्या? नो, लक्ष्मी देवी का धन भक्ति भी है। लक्ष्मी केवल धन नहीं बांट रही हमको, लक्ष्मी का परम धन तो भक्ति है, सेवा, सेवा करने की प्रवृत्ति, जो चरण सेवा करती है ना विष्णु की, वो उनका मूल धन है। और बाह्य धन जो है वो रुपया और डॉलर और यूरो है, पाउंड है, जो नश्वर है, जो उनका चंचला स्वरूप उससे प्रकट होता है ना। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। जब तक हम केवल उसको ही चाहते हैं तो वो चंचला रहती है, कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी हाँ रहेगी कभी वहाँ रहेगी। तो फूलपाखरू कैसे होता है ना, वो तितली कैसे होती है, बटरफ्लाई, कभी ये फूल पे कभी वो फूल पे, कभी एक फूल पे कांस्टेंट नहीं बैठता कभी तितली, यहाँ थोड़ा मधु लिया, थोड़ा वहाँ से लिया, थोड़ा वहाँ से लिया, कोई स्थिरता नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब नारायण को हम स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो लक्ष्मी देवी हमारे घर में स्थिर हो जाती है। तो जो नारायण को अपना स्वयं मानते हैं और अपना वंदनीय पूजनीय सेव्य मानते हैं, फिर लक्ष्मी उसका सहारा कभी नहीं छोड़ती है, उसके घर में कभी भी अपने आश्रय ले लेती है और छोड़ती नहीं है। तो आज के दिन रात भर जगना क्यों चाहिए, उसका कई कारण है। एक कारण यह है कि भगवान बंसी बजा रहे हैं, रास करने वाले हैं। तो सब भक्त लोग जो हम लोग रास के योग्य नहीं है, हम भगवान के किसी के योग्य नहीं है, फिर भी हम इसका इस रात्रि को जो भगवान ने अपना सर्वोच्च प्रेम जीवों के प्रति, जो गोपियाँ बनकर आई उनके प्रति, जो योग्य थी वो सबके प्रति अपना सर्वोत्तोपरि प्रेम जो है वो प्रकट किया। उस अवसर पर भक्त लोग जगते हैं और कीर्तन करते हैं, लीला स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, एक कारण है। दूसरा एक कारण है कि जब भी समुद्र मंथन में से आखिर में अमृत उत्पन्न हुआ है ना, समुद्र मंथन में आखिर में क्या उत्पन्न हुआ, धन्वंतरी भगवान उत्पन्न हुए, एक हाथ में कलश लेकर, एक हाथ में लीच लेकर बाकी सारे। तो वो जो कलश लेकर उत्पन्न हुए तो बहुत सारा घमासान युद्ध हुआ बीच में, मेरा 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 मेरा, मुझे पहला मिलना चाहिए, मुझे पहला मिलना चाहिए। फिर मोहिनी देवी आई, फिर बहुत सारा गड़बड़ हो गया। फिर वो राक्षसों को भगवान ने मोहिनी बनकर चीट किया और सब देवताओं को दे दिया। फिर गरुड़ लेकर उसको भाग गए, देवताओं के कस्टडी में अमृत आ गया। तो देवताओं ने क्या किया, उसको चंद्र देवता के पास में कस्टडी में रखा, कहीं ना कहीं रखता है ना उसको, धन जैसा रखा उन्होंने कुबेर के पास, जो भी धन है वो कोष जो है वो कुबेर के पास है, तिजोरी पूरी कुबेर के पास है। वैसे अमृत की कस्टडी चंद्र देवता के पास है, सोम देवता, इसलिए अमृत का और एक नाम है सोमरस, क्योंकि सोम देवता के पास में मिलता है वो, सोम देवता सबको देते हैं इसलिए उसका नाम है सोमरस। तो आज की रात का जो चंद्रमा है वो साल भर के चंद्रमा से बड़ा चंद्रमा है, आप ठीक से गौर से देखिए उसको। द बिगेस्ट साइज ऑफ मून इज सीन टू नाइट वंस इन अ ईयर। और चंद्रमा भी अमृत का क्या है, उनके पास में रखा है ना, वो थोड़ा अधिकार उनके पास भी है। ब्रह्मा जी मंगा लेते हैं कभी, चाहे तभी इंद्र मंगा लेते हैं, सबको बांटते हैं वो, लेकिन पास उनके रखा हुआ है। तो वो आज के दिन अपने ही अधिकार में वो अपने किरणों के माध्यम से जहाँ पर उनके किरण गिर रहे हैं वहाँ पर सब अमृत को प्रदान करते हैं सबको। आज के चंद्र के किरण केवल सुशीतल नहीं है, अमृत से भरे हुए भी हैं, इसलिए जहाँ जहाँ ये किरण गिरते हैं, आमतौर पर ये सारे किरण जो है वो फलों को, पुष्पों को, जड़ी बूटियों को पुष्टि देते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ चंद्र किरण, वो हर रात को वो सभी जड़ी बूटियों को जीवन देते हैं। इस रात को जहाँ पर भी चंद्र किरण गिरते हैं वो सबको अमृत प्राप्त होता है। और मनुष्य भी अगर इस रात को अपने शरीर पर चंद्र किरण ले रहा है तो उसको अमृत प्राप्त होता है, यानी ऐसा पता नहीं चलता कि 5 ml आ गया 10 ml आ गया, ऐसा नहीं, वो एक सूक्ष्म भाव है उसका, जिससे आपके आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। अमृत का मतलब क्या है, जो मृत्यु से दूर करता है ना, उसको अमृत कहते हैं। इसलिए एक और माध्यम है इस अमृत को ग्रहण करने का, एक तो हम त्वचा से ग्रहण करते हैं, एक नेत्रों से ग्रहण करते हैं। अगर आप आज की रात को छत पे बैठकर चंद्रमा को खुली आंख से देखते रहे, उसको कहते हैं त्राटक। त्राटक का मतलब है क्या कहते हैं, इसके पलके ना बुझाते मिचाते हुए ऐसे ही देखना, तभी उसके बाद में आँख में पानी आने लगता है, और उसको भी आप सहन करेंगे नहीं मिटेंगे तो पानी आना बंद हो जाता है, फिर आप निरंतर बिना पलक मिचे हुए देख सकते हैं, योग प्रक्रिया है। अभी देखते रहेंगे तो तुरंत आँख में लाल गर्म हो जाएगा और पानी आने लगेगा, फिर आप लगेगा बंद करो एक बार ऐसे, लेकिन आप उसको भी सहन करेंगे प्रयास करके तो फिर आपको वो जलन भी खत्म हो जाएगी और आँख लंबी समय तक आप खुली देख सकते हैं। और रात के समय क्या होता है, आँखों की पुतली अंधकार के वजह से बहुत बड़ी होती है ना, अब ब्राइट लाइट हो गई तो क्या होता है, आपकी पुतली छोटी हो जाती है, वो लाइट का मैनेजमेंट है। वो लाइट ज़्यादा होती है तो पुतली कम होकर उतनी लाइट अंदर लेती है, लाइट कम होती है तो पुतली बड़ी होकर ज़्यादा प्रकाश अंदर लेती है। तो रात के समय पर वैसे भी पुतली बड़ी होती है क्योंकि रात का अंधेरा होता है, उसमें जो पुतली बड़ी होती है मैक्सिमम होती है और उसमें चंद्रकिरण प्रवेश करते हैं, कहते हैं आँखों का आरोग्य, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाती है बहुत। इसलिए या तो लेट कर या तो आराम कुर्सी में सर ऊपर करके आँखों को रख कर बहुत देर तक चंद्र को देखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वो तो नेत्रों के माध्यम से आपने अमृत ग्रहण किया। सफ़ेद रंग की जो वस्तु है, खास करके गाय का दूध, उस सफ़ेद रंग की वस्तु में अमृत प्रवेश करता है। इसलिए आप प्लेन दूध रखो गर्म करके, या दूध को उबाल कर गाढ़ा करके उसको कंडेंस करके रखो, या उसको बासुंदी बना के रखो, या उसको खीर बना के रखो, या ठंडाई बना के रखो, या बर्फ़ी बना के रखो, या कुछ भी बना के रखो। वो दूध के पदार्थ को जब आप सूरज के चंद्र के किरण में रखोगे आज रात को तो उसमें वो अमृत प्रवेश करता है। चाहे 1 घंटा रखो 2 घंटा रखो ओवरनाइट रखो और अगले दिन या उसी के बाद ग्रहण करोगे तो उसके माध्यम से आपको ये अमृत का लाभ होता है। एक और आयुर्वेदिक बात भी इसके अंदर छुपी हुई है। शरद ऋतु जो है ना वो भी शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हर ऋतु 2 महीने का होता है, शरद पूर्णिमा उसके बीच में आती है। इसका मतलब शरद ऋतु आज शुरू नहीं हो रहा है, वो शुरू होकर बहुत दिन हो गया। हम लोग पुरोहित लोग जब भी वो कहते हैं ना संकल्प करते हैं तो शरद ऋतु कब का आ चुका है। मैंने तीन यज्ञ किए, तीनों में शरद ऋतु का ही नहीं उल्लेख आया था। तो शरद ऋतु की विशेषता क्या है? शरद ऋतु में, अभी तो सब कुछ कलयुग में कुछ भी होता है, अभी देखो शरद ऋतु का समय है तो कड़क धूप होनी चाहिए, अभी तो वर्षा हो रही है, आकाश में बादल बैठे हुए हैं। शरद ऋतु में विरेचन क्रिया करते हैं, उसके लिए भी कड़क धूप चाहिए। अगर विरेचन क्रिया कर रहे हैं, अचानक बादल आते हैं, तो विरेचन के बदले में आपको उल्टी हो जाएगी। मेरे बारे में हुआ ऐसे। तो शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त बढ़ता है, आम आदमी को भी जल्दी क्रोध आने लगता है, जो ऑलरेडी पित्त प्रकृति का है वो ज़्यादा ही चिड़चिड़ करता है। ये सब सत्य है। पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात प्रकृति, तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है। और पित्त प्रकार की प्रवृत्ति में क्या क्या होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हाँ हाथ पाँव काँपने लगते हैं, बहुत भयंकर भूख लगती है, सहन नहीं होती है भूख उस व्यक्ति को, उसको भूख लगेगी मतलब वो दुनिया को सब परेशान करेगा, जब तक खाना नहीं मिलेगा उसको, जब तक जैसे खाना मिलेगा एकदम प्रेमी बन जाएगा वो। तो पित्त स्वभाव के व्यक्ति का और एक लक्षण है कि वो प्रेमी भी होता है, जब बहुत जल्दी क्रोध आता है लेकिन उतना ही वो प्रेम भी करता है। तो ये पित्त प्रकृति का अगर आपको शमन करना है तो उसका एक उपाय है दूध की मिठाई खाना। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु में, यानी कि दिवाली के समय पर, शरद ऋतु के कार्य में, काल में दूध की बनाई हुई मिठाई खाते रहना चाहिए ताकि पित्त का कष्ट नहीं होता है। इसलिए भी आज के दिन दूध की खीर बनाते हैं, उसमें कैम्फर डालते हैं, एडिबल जो खाने लायक कैम्फर होता है ना, कपूर, वो डालते हैं, और वो डालकर उसको खीर बनाकर पहले कृष्ण को, राधा रानी को अर्पण करते हैं, और फिर उसको चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। एक हमारे आयुर्वेद में और भी एक संकल्पना है, एक सुंदर लिखा गया है कि चावल की खीर अगर आज की रात में चंद्रमा के प्रकाश में रखकर कोई अस्थमा का मरीज खाता है तो उसको भी लाभ होता है उसका। मेरी मैया जो है बचपन में इस दिन खीर बनाकर रात भर बैठती थी टेरेस पर, क्योंकि उसको अस्थमा था। हमारा शास्त्र कितना प्रगल्भ है, देखो आप कितना रिच है, उसका आरोग्य का उसमें अंतर्भाव है, उसकी भक्ति का अंतर्भाव है, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। हमारा भक्ति मार्ग जो है वो केवल स्टैंड अलोन मार्ग नहीं है, उसमें आरोग्य भी समाहित है, समाहित किया गया है। तो ऐसे कई प्रकार के क्या है, वेज ऑफ लुकिंग एट शरद पूर्णिमा है ना, आरोग्य की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, नेत्र ज्योति की दृष्टि से, पित्त शमन की दृष्टि से, आप देखिए हर प्रकार से हमारे त्यौहार जो है वो सब परिपूर्ण हैं, जो हमें भक्ति में, आरोग्य में, सुकून में, शांति में, आनंद में आगे बढ़ाने में समर्थ हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।